लेकिन फिलहाल अब उसके लिए जानना जरूरी था कि आस्था की जान लेने की कोशिश आखिरकार क्यों की गई थी। अब वो सेल्स गर्ल अरमान के ठीक सामने डरी हुई खड़ी थी। अरमान उसके सामने एक राजा की तरह बैठा हुआ था और उसके चारों तरफ आकाश, सुमित, ध्रुव और आहान खड़े हुए थे। वो चारों भी गुस्से से बिना किसी इमोशंस के उस सेल्स गर्ल को देख रहे थे। वो सेल्स गर्ल उस वक्त बुरी तरह से कांप रही थी क्योंकि अरमान केवल अंधेरे में बैठा था, जिसकी वजह से सेल्स गर्ल अरमान को और बाकी चारों का चेहरा नहीं देख पा रही थी। सारी स्पॉटलाइट सेल्स गर्ल के ऊपर ही पड़ रही थी, तो सेल्स गर्ल चारों तरफ इधर उधर देख रही थी। अरमान की आवाज वहां गूंजी, सोचना भी मत, अगर तुम यहां से भागने के बारे में सोच रही हो तो तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो, क्योंकि तुम यहां से किसी भी कीमत पर भी बचकर नहीं जा सकती हो, क्योंकि तुम किसी भी कीमत पर यहां से बचकर नहीं जा पाओगे। अरमान ने अपनी सख्त आवाज में ये कहा तो सेल्स गर्ल की रीढ़ की हड्डी तक में सहरन सी दौड़ पड़ी थी और उसके चेहरे से पसीना निकलना शुरू हो गया था। अचानक से उसने अपने दोनों हाथों को जोड़ लिया था और घुटनों के बल बैठकर जोरों से रोना शुरू कर दिया था और रोते रोते उसने कहा, मुझे माफ कर दीजिए साहब, मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है। मुझे तो उस अनजान मैडम मलाइका ने पैसे दिए थे और कहा था कि अगर मैं उस लड़की को उस चेंजिंग रूम में बंद कर दूंगी तो उस लड़की को कुछ नहीं होगा, उसकी जान नहीं जाएगी, बस वो केवल कुछ देर के लिए उसे सताना चाहती है। मेरी यकीन मानिए, मैं उस लड़की को जानती तक नहीं थी, मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी कि मैं उसे किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचाऊं। उस सेल्स गर्ल ने रोते हुए सारी बातें कही थी तो अरमान का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया था। अरमान ने अचानक से अपनी उंगलियों से चुटकी बजाई थी और अरमान के चुटकी बजाते ही एक पिंजरा टाइप जैसा कुछ वहां आ गया था जो सीधा उस लड़की के ऊपर जा गिरा था। अब तो वो सेल्स गर्ल बुरी तरह से डर के कांप उठी थी क्योंकि उसे ऐसा लगने लगा मानो कि वो कहीं कैद हो गई हो। और तभी अचानक से उस पिंजरे में से ऊपर ऊपर एक थैला सा था और जैसे ही अरमान ने एक बार और चुटकी बजाई, अचानक से उस थैले के अंदर से छोटी छोटी मधुमक्खियां निकलनी शुरू हो गई थीं। अब तो सेल्स गर्ल ने जोरों से चीखना शुरू कर दिया था लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके सारे जिस्म के हिस्सों पर उन मधुमक्खियों ने हमला कर दिया था और बुरी तरह से उसे काटना शुरू कर दिया था। इतना भयानक मंजर देखकर एक पल को ध्रुव और आहान का गला सूखने लगा था लेकिन सुमित और आकाश केवल सपाट चेहरे के साथ उस ओर देख रहे थे। तभी अरमान की जोरदार आवाज वहां गूंजी, अरमान सिंघानिया के किसी भी चीज को कोई नुकसान पहुंचाने का या उसकी ओर देखने का किसी को भी कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें सिर्फ ये छोटी सी सजा दी गई है। अगली बार से तुमने अरमान सिंघानिया की वाइफ आस्था सिंघानिया के साथ किसी भी तरह की चालबाजी करने की कोशिश की तो तुम्हारी हालत बद से बदतर की जाएगी। साथ ही साथ अरमान ने आहान से कहा, जाकर उस औरत का स्क्रैच बनवाओ जिसके कहने पर इसने आस्था को चेंजिंग रूम में बंद किया था। आहान, जो कि पहले से ही कांप रहा था, अरमान की बात सुनकर अपने आप को थोड़ा सा कंसोल करते हुए कहने लगा, आप फिक्र मत कीजिएगा भाई, मैं ये काम कर लूंगा। और जल्दी ही वो सेल्स गर्ल जो कि उस पिंजरे में बेहोश हो चुकी थी, अरमान के कुछ आदमियों ने उसे वहां से लेकर सीधा हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के लिए ले गए थे। तभी अरमान ने उन चारों की ओर देखते हुए कहा, मेरा एक इम्पोर्टेंट कॉल है, मैं अभी करके आता हूँ। ऐसा कहकर अरमान वहां से चला गया था। तब आकाश और सुमित ने ध्रुव और आहान की ओर देखा और उन दोनों का मजाक उड़ाते हुए कहने लगे, क्या हुआ, इतना क्यों डर रहे हो, क्या तुम लोगों ने ये सब पहली बार देखा है? तभी आहान और ध्रुव कहने लगे, हाँ, हम जानते हैं कि हम ये सब कितनी बार देख चुके हैं लेकिन हर बार जब भी देखते हैं ऐसा लगता है पहली बार देख रहे हैं। तभी आहान ने कहा, लेकिन ये सब बातों में एक बात मुझे अच्छी लगी, आज अरमान भाई ने आस्था भाभी के लिए स्टैंड लिया। मुझे लगता है कि जरूर भाई के दिल में आस्था भाभी के लिए कुछ ना कुछ फीलिंग्स हैं, तभी तो उन्होंने उस सेल्स गर्ल को इतनी भयानक सजा दी है। तभी आकाश बड़े ही सपाट चेहरे से उनकी ओर देखते हुए कहने लगा, बात तब अच्छी होती जब अरमान ने आस्था को अपनी कोई चीज ना कहता। अरमान के लिए आस्था सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, वो अभी तक आस्था को ना तो प्यार करता है और ना उसे अपनी बीवी मानता है। आकाश ने सच्चाई से उन तीनों को रूबरू करवाया था तो तीनों एक दूसरे की ओर देखने लगे थे। तभी अरमान वहां वापस आकर एक बार फिर किंग की तरह कुर्सी पर बैठ गया था। थोड़ी देर बाद दो और लोगों को वहां लाया गया था। वो दो लोग कोई और नहीं बल्कि प्रियंका और साथ ही उसका बॉयफ्रेंड करण थे, जिन्हें अरमान ने उस वक्त अगवा कर लिया था जब उसे ये पता चला था कि प्रियंका उसकी शादी से भाग गई थी और उसकी जगह आस्था से उसकी शादी हुई थी। वो इस बात के बारे में पता लगाना चाहता था कि आखिरकार आस्था उसकी जिंदगी में कैसे आई, क्योंकि उसने तो अपने लिए कम खूबसूरत लड़की को पसंद किया था जिस लड़की की खूबसूरती कुछ खास नहीं थी, क्योंकि अरमान को शुरू से ही खूबसूरत लड़कियों से नफरत थी। और वो नफरत क्यों थी, इसके बारे में हमें आने वाला समय ही बताने वाला था। प्रियंका का चेहरा, जो कि एक काले कपड़े से कवर किया हुआ था, अरमान ने जल्दी ही इशारों से उसके चेहरे पर से कपड़ा हटवा दिया था। अब प्रियंका को अपने सामने देखकर सुमित, आकाश, आहान और ध्रुव भी मन में सोचने लगे
क्या वाकई में अरमान भाई ने अपने लिए इस लड़की को चुना था? क्योंकि प्रियंका दिखने में भले ही खास नहीं थी, लेकिन खूबसूरत तो वो भी थी। लेकिन आस्था की जितनी खूबसूरत नहीं थी, तो कहीं ना कहीं वो लोग सोच रहे थे कि अच्छा हुआ प्रियंका से अरमान भाई की शादी नहीं हुई, क्योंकि अरमान के साथ आस्था भाभी ही अच्छी लगती है। क्योंकि कहीं ना कहीं आस्था को पहले दिन से ही वो सब अपनी भाभी का दर्जा दे चुके थे। वो उस वक्त केवल मन ही में सोच सकते थे, लेकिन अरमान के सामने कुछ बोल नहीं सकते थे। उसके बॉयफ्रेंड के चेहरे पर से भी अब कपड़ा हटा दिया गया था। उन दोनों को भी केवल काले साए में बैठा हुआ कुछ दिखाई दे रहा था, लेकिन अरमान सिंघानिया की शक्ल उन्हें दिखाई नहीं दे रही थी। अब प्रियंका घबराते हुए बोली, ये सब क्या हो रहा है? कौन लेकर आया है हमें यहाँ पर? देखो कौन हो तुम लोग, हमें जाने दो वरना मैं तुम्हारी कंप्लेन पुलिस में कर दूंगी। ऐसा कहकर प्रियंका घबराते हुए अपने चारों तरफ देख रही थी, लेकिन उसे केवल कुछ काले साए के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अरमान की एक बार फिर डेंजरस आवाज वहां गूंजी थी, मैं तुम दोनों से सिर्फ कुछ सवाल करूंगा, अगर तुम लोगों ने उसका जवाब मुझे सही और सच में नहीं दिया तो तुम दोनों का आज दुनिया में आखिरी दिन होगा। अरमान ने ये सवाल किया था तो प्रियंका के चेहरे पर थोड़ी सी घबराहट साफ दिखाई देने लगी थी। वो थोड़ा सा खुद पर कंट्रोल करते हुए कहने लगी, आखिरकार आप हैं कौन और आप मेरी शादी के बारे में सवाल क्यों कर रहे हैं? कहीं आप अरमान सिंघानिया तो नहीं है? अब जैसे ही प्रियंका ने अपना थोड़ा सा अंदाजा लगा कर ये कहा, अचानक अरमान ने अपने दोनों हाथों से एक बार तालियां बजाई थी और देखते ही देखते अरमान के गार्ड्स ने आकर प्रियंका और उसके बॉयफ्रेंड को गन पॉइंट पर ले लिया था। अब तो प्रियंका की हालत खराब होने लगी थी और वो बोली, माफ कीजिएगा, मुझे नहीं पता आप लोग कौन हैं, मैं ना ही जानना चाहती हूँ, लेकिन मैं वो शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे पापा ने मुझे जबरदस्ती फोर्स किया था और फिर मैं करण से प्यार करती थी।
लेकिन शादी के दिन जब मैं शादी के लिए तैयार हो गई, मेरे पास एक फोन कॉल आया और वो फोन वाला जो कोई था उसने मुझे कहा कि अगर मैंने ये शादी बीच में छोड़ के नहीं आई तो वो मेरे बॉयफ्रेंड करण को मार डालेंगे। उन्होंने मेरे बॉयफ्रेंड करण को अगवा कर लिया था, इसीलिए मजबूरन मुझे वो शादी छोड़कर वहां से भागना पड़ा था और करण की जान बचाने के लिए मैं वो शादी छोड़कर भाग गई। और जैसे ही मैं उन लोगों के बताए हुए एड्रेस पर पहुंची तो मैंने देखा कि करण को वहां रस्सी से बांधा गया था। तब मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, हमें आसपास वहां कोई भी दिखाई नहीं दिया था और उसके बाद मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं वापस से शादी के मंडप में जा सकूं। और करण और मैं उसी दिन से हम दोनों छुप छुप कर रह रहे थे। और आस्था मेरी बुआ जी की बेटी है, वो गांव में पढ़ी लिखी है। जब एक दिन मैंने पापा से चोरी छुप के मुलाकात करने की कोशिश की तब उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने आस्था को शादी के मंडप में बिठा दिया था, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो अरमान सिंघानिया हमारे पूरे परिवार को मार डालता। इसीलिए मेरे पापा ने आस्था के आगे अपने दोनों हाथों को जोड़कर उससे रिक्वेस्ट की थी, तो इसीलिए आस्था मना नहीं कर पाई और उसने वो शादी कर ली। प्रियंका ने डर के मारे सारी बातें बताई थी तो अरमान हैरान हो गया था और अगले ही पल उसने सुमित को कुछ इशारा किया। तब सुमित ने अपने चेहरे पर एक मास्क पहनकर प्रियंका के सामने गया और बोला, जिस नंबर से तुम्हें फोन आया था उस नंबर की पूरी डिटेल्स दो, इस बीच तुम कहाँ कहाँ रही हो वो सब बताओ, लेकिन तुमने अरमान सिंघानिया की शादी से भागने की हिम्मत की है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। ऐसा कहकर जल्दी ही सुमित ने कुछ गार्ड्स को इशारा कर दिया था और गार्ड्स ने जमकर करण की धुलाई करनी शुरू कर दी थी और प्रियंका खड़े खड़े चीखने लगी थी। लेकिन करण की अच्छी खासी धुलाई होने के बाद अरमान ने प्रियंका और करण को भी वहां से हॉस्पिटल की ओर रवाना कर दिया था। अब फिर अरमान कहने लगा, पता लगाओ कि ये किसका नंबर है और किसने इस नंबर से फोन किया था, कौन चाहता था कि अरमान सिंघानिया की बेइज्जती हो? तभी आकाश कहने लगा, इसमें पता लगवाने वाली कौन सी बात है, तू तो जानता है ना तेरा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, वीर रायचंद, जरूर उसी ने ही ये सारी चाल चली होगी ताकि तुम बदनाम हो सको और तेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाए और तेरी कंपनी के शेयर्स रातों रात गिर जाएं और उसकी कंपनी नंबर वन पर आ जाए। आकाश ने ये कहा था तो अरमान का चेहरा वीर रायचंद का नाम सुनते ही एकदम सख्त हो गया था और उसने दोनों हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद कर लिया था। उसके बाद उसके शरीर की नसें इस तरह से दिखाई दे रही थीं मानो कि उसके शरीर में नीले नीले रंग की अलग अलग नदियां सी बह रही हों। काफी सारी नसों की नीले रंग की इस वक्त दिखाई दे रही थी। अरमान का ओरा उस वक्त बड़ा ही खतरनाक लग रहा था।